नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। श्रीलंका की सरकार ने चीन के साथ अपने ऋणों के पुनर्गठन पर एक प्रारंभिक समझौता करने की पुष्टि की है। इसे नकदी संकट से जूझ रहे देश के आर्थिक सुधार में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार को ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वो चीन के निर्यात आयात बैंक के साथ ऋण पुनर्गठन के प्रमुख सिद्धांतों और सांकेतिक शर्तों पर एक समझौते पर पहुंच गई है। श्रीलंका पर 46 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण है, जिसमें से करीब 52% उसे चीन से मिला है। बयान में कहा गया है कि सैद्धांतिक रूप से समझौते में करीब 4.2 अरब अमेरिकी डॉलर का बकाया ऋण शामिल है। ये श्रीलंका की दीर्घकालिक ऋण स्थिरता को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और त्वरित आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के चेयरमैन अशोक भूषण ने बृहस्पतिवार को डिजिटल बाजारों को विनियमित करने के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। भूषण ने राष्ट्रीय राजधानी में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 के उद्घाटन समारोह के मौके पर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बाजार अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। पंजाब को केंद्र सरकार से 3,670 करोड़ रुपए का लंबित GST मुआवजा मिल गया है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को ये जानकारी दी। केंद्र से ये GST क्षतिपूर्ति जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2022 तक के लिए मिली है। चीमा ने कहा कि राज्य के उत्पाद एवं कराधान विभाग ने केंद्र के समक्ष लंबित GST मुआवजे का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राज्य को 3,670.64 करोड़ रुपए जारी करने के आदेश दे दिए हैं। चीमा ने बकाया मुआवजा राशि जारी करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। गुजरात में मूंगफली की आवक बढ़ने के बीच देश के तिल तिलहन बाजारों में बुधवार को मूंगफली तेल तिलहन के थोक दाम धराशायी होते नजर आए, जबकि बाकी सभी तेल तिलहनों की थोक कीमतें पूर्व स्तर पर बनी रही। धन की कमी की वजह से सुस्त कारोबार रहने के कारण सरसों, सोयाबीन तेल, तिलहन, कच्चा पाम तेल एवं पामोलिन तथा बिनौला तेल के थोक दाम पूर्व स्तर पर बने रहे। बाजार सूत्रों ने कहा कि गुजरात में विशेषकर सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली फसल की आवक बढ़कर लगभग 3 लाख बोरी हो गई, जिससे मूंगफली तेल तिलहन के थोक दाम धराशायी हो गए। पिछले कई महीनों से बेपड़ता आयात जारी रहने के बीच अब आयातकों, खाद्य तेल पेराई मिलों जैसे अंशधारकों की वित्तीय स्थिति डावाडोल हुई है और धीरे धीरे उनकी कारोबारी गतिविधियां कम हो रही हैं, जिस वजह से सरसों, सोयाबीन तेल तिलहन, कच्चा पाम तेल एवं पामोलिन तथा बिनौला तेल के थोक दाम पूर्व स्तर पर बने रहे। उत्तर बंगाल के चाय बागानों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 19% के बोनस भुगतान पर समझौता कर लिया है। उद्योग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। इसमें डुआर्स और तराई शामिल हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में इस क्षेत्र के चाय बागान श्रमिकों को भुगतान किया जाने वाला वार्षिक बोनस 20% था। भारतीय चाय संघ के महासचिव प्रबीर भट्टाचार्य ने कहा, प्रबंधन और यूनियनों ने फैसला किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए डुआर्स और तराई के मैदानी इलाकों में चाय बागानों के कर्मचारियों और श्रमिकों को बोनस का भुगतान 19% होगा। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग को छोड़कर उत्तर बंगाल में लगभग 135 चाय बागान परिचालन में हैं। इस बीच दार्जिलिंग चाय बागानों के लिए बोनस भुगतान का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है, क्योंकि यूनियनों ने 20% की मांग की है, जबकि प्रबंधन ने कहा है कि वो 8.33% का भुगतान कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घरेलू संसाधन जुटाने को विकासशील देशों के साथ काम करने के लिए IMF के साथ जुड़ने की भारत की इच्छा व्यक्त की। इसको लेकर G20 सम्मेलन में भी एजेंडा लाया गया था। पिछले महीने G20 नई दिल्ली नेताओं के घोषणा पत्र में IMF और विश्व बैंक से अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय में उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू संसाधन जुटाने के प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया गया था। मोरक्को के मराकेश में IMF विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के मौके पर IMF की MD क्रिस्टलीना जॉर्जीवा के साथ बैठक के दौरान सीतारमण ने भारत की अध्यक्षता में G20 के दौरान समर्थन के लिए IMF का आभार जताया। इसमें डिजिटल सार्वजनिक ढांचे से संबंधित कार्य और तकनीक संचालित आर्थिक वृद्धि और उत्पादकता लाभ को बढ़ावा देना शामिल था। घरेलू शेयर बाजारों ने बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में हासिल तेजी। आईटी शेयरों में गिरावट के बाद खो दी। टीसीएस के सुस्त आर्थिक माहौल का क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव जारी रहने संबंधी बयान देने के बाद आईटी संबंधी शेयरों में गिरावट आई। बैंकिंग, ऑटो और धातु संबंधित शेयरों में बढ़त के कारण 30 शेयरों वाला सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला और 104 अंक बढ़कर 66,577.60 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि आईटी शेयरों में गिरावट से सुबह 9:50 पर सेंसेक्स 84.16 अंक या 0.13% के गिरावट के साथ 66,388.89 पर आ गया। वहीं निफ्टी ने भी जल्दी ही अपनी शुरुआती बढ़त खो दी और वो 23.70 अंक या 0.12% की गिरावट के साथ 19,787.65 पर कारोबार कर रहा था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।